கரவிந்தே நபதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே வினிவேஷயந்தம் வர்த்தஸ்ய பத்ரஸ்ய பூதேஷயானம் பாலம் முகுந்தம் மனசாஸ்மரம் ஸ்ரீகிருஷ்ண ராதா வரே கோகுலேஷ கோபால ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரி ஹே நாத நாராயண வாசுதேவா ஜிஹ்வேதி பஸ்வா கிருத்மேத தேவ கோவிந்த தாமோ முராரி பாதே தயாதிக்கோவிந்தரமாதவே கிருஹே கிருஹே கோவது சர்வவியாக்யயோகம் புண்ணியாமினா நித்யம் கோவிந்ததாமோ சுகம் ஷயானாம் ஜேபி நாமானி விஷ்ணு ப்ரவரந்தி மத்யாம் தன்மய காமஜந்தி கோவிந்ததாம ஜிஹ்வை சதைவம் பஜ சுந்தராணி நாமானி கிருஷ்ண ஸ்ய மனோகராணி சமஸ்த பாசா த்ரிவிமர்சனானி கோவிந்ததாம துக்காவசானே ஸ்ரீகிருஷ்ண ராதா வர கோகுலேஷ கோபால கோவர் கனநாத விஷ்ணு மதுர பிரியம் சத்யம் ஹிதம் த்வாம் பரமம் வதாமி ஆவர்ணயேதா மதுராட்சராணி கோவிந்ததாமோ தரமாதவேதி த்வாமேவ யாசே மம தேஹி ஜீவே पावते जन तदरे कृता ते वक्तव्य में मधुर सुभद्रा गोविंद गावो कर माधवे थी गोविंद गावो कर माधवे थी गोविंद गावो कर माधवे सन्नो भवत् सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मविष्णु सत्यं तन्मामतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां अवतु ॐ शान्ति 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 वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं विष्णुं वन्दे जगत् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दसन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये काशी विश्वनाथ भगवान
की जय।
भागवत भगवान
की जय।
व्यास जी महाराज
की जय।
सुखदेव जी महाराज
की जय।
प्रेमपुरी जी महाराज
की जय।
सद्गुरुदेव भगवान
की जय।
सब संतन
की जय।
कृष्ण कन्हैया
लाल की जय।
ओम नमः
पार्वती पते हर हर महादेव।
पूर्ण परब्रह्म अव्यक्त निराकार निर्गुण जिसका संकेत वेदव्यास जी करते हैं, ऐसा वो पूर्ण परब्रह्म जिसका हम लोग ध्यान करते हैं, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य हैं वही परमात्मा साकार होकर के और वही साकार परब्रह्म जो सभी कामों को देने वाला है, आप्त काम होते हुए भी वो सत्य संकल्प है। परमात्मा सत्य संकल्प है, स्वयं भी परिपूर्ण है और वो दूसरे को भी परिपूर्ण करता है। गोपिकाओं ने, गोप कन्याओं ने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपासना की थी और भगवान ने कहा था कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और उसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची थी, ऐसी भागवतकार कहते हैं। ऐसी तो लीला सब परमात्मा की है, जिस लीला में हम रहते हैं वो हमने बनाई नहीं है, परंतु समझने का थोड़ा सा अंतर है। हम समझते हैं कि हमने निर्माण किया है, ये हमारी अपनी बुद्धि है, अपनी कल्पना है। ये परमात्मा से ही निर्मित ये संसार है और उसमें जैसे वो चलाता है, जैसे जिसको नचाता है वैसे ही नाचते हैं। हमारे नाचने के लिए ना कोई मंच है, ना कोई संगीत है, ना कोई दृष्टा है, ना कोई दृश्य है। केवल वही परमात्मा के हम जैसे जैसे उसने जो जो हमें निमित्त बना करके उस परमात्मा ने यहां पर भेजा है वही हम करते हैं। और जो कर्म के द्वारा हम जिस प्रकार अपना कर्तव्य करते हैं, और कर्तव्य कैसे करना चाहिए शास्त्र बताते हैं। हमारी अल्प आयु, थोड़ी सी आयु होती है, कोई कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीते हैं, सब नहीं जी पाते हैं। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, उसका कभी कभी हम विवेचन करते हैं। जो विवेकी पुरुष होते हैं उसका विवेचन करते हैं और उसके बाद में यहां से चले जाते हैं। अब लोगों ने आजाद मिल का वृत्तांत तो सुना, जाना तो है ही, और कहां जाना है? जाना है फिर से जिसने यहां पर भेजा था उसके पास जाना है। जैसे ही कोई नौकर होता है वो किसी काम के लिए भेजते हैं और उसको आकर के उस सेठ को उत्तर देता है वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा देखने में आता है। और काम हुआ हो तो वो जो सेवक है वो बोलता है कि जो आपने कहा था उस काम से वो काम करके मैं आया हूं। कोई कोई असफल होता है किसी कारण से और वो आकर के बोलता है कि मेरे से काम वो नहीं हुआ, मेरा दायित्व तो पूरा नहीं कर पाया। दोनों बातें। तीसरा होता है एक काम चोर, जो निकलता तो है काम के लिए, परंतु जैसे काम आ गया और उसके बीच में कोई व्हाट्सएप आ गया, वो देखने में लग गया। कम से कम काम के समय तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां जो विद्यार्थी बैठे हुए ना, उनके पास में, किसी के पास में अपना मोबाइल नहीं है, नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चे इतना ही कि वो मोबाइल लेके पैदा नहीं होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, एक साल का, उसको अगर आपको खिलाना हो, उसको चुप कराना हो, तो आप उसको सामने मोबाइल रख देते हैं। कुछ लोग अपना दायित्व तो नहीं निभाते हैं। अब जब यहां से वापस जाते हैं तो अपने स्वामी के साथ में वो नजरें नहीं मिला सकते। इसलिए जो हमें दायित्व प्राप्त हुआ है उसको ठीक ठीक निभाना चाहिए, और जब वापस जाए हम लोग उस परमात्मा के पास, तो उनसे हम उत्तर दे सके, तुमने जितना हमें काम सौंपा था उतना तो नहीं कर पाया, परंतु मैं जीवन में असफल भी नहीं रहा, अपना दायित्व निभाते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए, मैंने तुमने जो कहा था उतना मैं थोड़ा सा तो करके आया हूं। उस परमात्मा के आंखों में आंखें डाल करके आप देख सको, इतनी तैयारी होनी चाहिए। और उस तैयारी के लिए उस परमात्मा की जब हम उपासना करते हैं, वो सत्य संकल्प है, परमात्मा कभी भूल नहीं करता है, भूल कर ही नहीं सकता है। एक तो मृत्यु अपना समय नहीं टालता है, और परमात्मा कभी भूल नहीं करता है। भूल अगर होती है तो जीव से होती है। इसलिए परमात्मा ने जो सत्य संकल्प किया था कि तुम्हारी जो मनोकामना है उसको मैं पूर्ण करूंगा, और भगवान ने वैसा ही स्वरूप धारण कर लिया। हम लोग समझते हैं कि वो मानव सा, जो जिसको समझते नहीं परमात्मा को, वो समझते हैं कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला क्यों की, चाहे वो वस्त्र हरण हो, चाहे वो रासलीला हो, वो मानव सी लीला। परंतु कभी कभी हमें भक्ति में ही आनंद आता है। जो क्लिष्ट जो ज्ञान है ना, वो हमारे गले उतरता नहीं है, उसके लिए तो अपने को स्वाध्याय करना पड़ता है। परंतु भक्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको भगवान का नाम ले लो, वही भक्ति हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करो, कीर्तन करो, ये भक्ति है। इसके लिए अधिक आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। वृद्ध कन्याओं ने भगवान की भक्ति की और उनसे वरदान प्राप्त किया, और भगवान ने उनको सुंदर वन में बुला करके, और फिर वहां पर भी अगर थोड़ा सा भी अभिमान रह गया तो भगवान केवल थोड़ी देर के लिए अदृश्य होते हैं। जब व्याकुलता बढ़ जाती है, जो भक्ति ज्ञाने की जब व्याकुलता बढ़ जाती है, तो भगवान उस अभिमान को नष्ट करते हैं। हम लोगों ने कल जो रासलीला का प्रसंग श्रवण किया, जो रास पंचाध्यायी है, उसमें बहुत अनंत ज्ञान भरा हुआ है। हम लोगों के पास में इतना समय नहीं होता है। अब एक ही अध्याय ने, एक केवल श्लोक पर एक किसी विद्वान ने 6 महीने तक कथा की थी। अपने महाराज जी कहते थे, जो प्रेमपुरी जी महाराज, मुंबई वाले लोग कम वक्त हैं। कम वक्त का मतलब उनके पास वक्त कम है। एक कम वक्त एक गाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं, जिनके पास में वक्त कम हो, भगवान अपना स्वरूप, अपनी लीला दिखाते हैं, और लीला ऐसी मानव सी करते हैं, जो आपका हृदय आह्लादित हो, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, ये भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता सुना दी, और उसमें बहुत ज्ञान डाल दिया, ज्ञान से परिपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता। और अंत में भगवान ने कहा कि ये तुमको करना है कि नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है, इच्छिष्यसि तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है ये हमने तुमको बतला दिया। इस प्रकार भगवान हमारे पर वो छोड़ देता है और जो हम कर्म करते हैं भगवान अपने संकल्प से पीछे नहीं हटता है। आपको भगवान ने क्या नहीं दिया, मानव को क्या नहीं उस परमात्मा ने दिया, आप किसी प्रज्ञा चक्षु से देखो और अपनी तुलना उससे करो। कोई प्रज्ञा चक्षु है जो देख नहीं सकता है, उसकी तुलना जो आपके सुंदर आंखें दी हुई है परमात्मा ने, उससे कभी तुलना करके देखो तो आपको लगेगा मैं कितना श्रेष्ठ हूं। कोई बहरा हो ना और वो बार बार बोलता है क्या क्या, ऊंची आवाज से बोलता है तो आप बहुत दूर की बात श्रवण करते हैं, आप उसकी तुलना करके देखो। उस परमात्मा ने हमें किसी बिना यंत्र के हम लोग श्रवण कर सकते हैं, उस परमात्मा की कृपा। हमारा इतना सुंदर दिल है ना, दिल में हम जो भी चाहे वो सोच सकते हैं, जो भी हम वो कर सकते हैं। उसने हमें इतना सुंदर दिल दिया कि नहीं दिया, इतनी सुंदर बुद्धि दी, क्या नहीं दिया उस परमात्मा ने हमें, सब कुछ दे दिया है। वो परमात्मा वो देने वाला है और वो शुद्ध संकल्प है, उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है। और इसी प्रकार गोपिकाओं को भी उन्होंने परिपूर्ण किया और परिपूर्ण करते हुए ऐसी एक रात्रि थी, कहते यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसी ब्रह्मा की रात्रि होती है उस प्रकार की वो रात्रि का निर्माण किया था। और रात्रि पर्यंत भगवान ने उनके साथ में लीला की और अंत में प्रातःकाल हुई होगी, जमुना जी में प्रवेश किया और जमुना जी में प्रवेश करने के बाद में अब प्रातःकाल हुई और भगवान ने कहा कि हे गोपिकाओं अब अपना अपने घर चले जाओ। गोपिकाओं की इच्छा नहीं थी अपने अपने घर जाए, परंतु भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे तुम जिनको जिनको छोड़ के आए हो वो अब उनको कुछ पता नहीं कि तुम कहां गए थे क्या, उनका बिल्कुल मन शुद्ध रहेगा, तुम्हारे साथ में जो जैसी भावना थी वैसी ही भावना बनी रहेगी, इसलिए वहां से आप तुम चले जाओ। भगवान ने उनको अपने घरों के लिए भेज दिया, जैसे कहा ना प्रातःकाल में कल जो रासलीला हुई उसका रहस्य बताएंगे गिरिवैद ने कहा ना, हालांकि ये हमारी बात है। और उस समय वो संपूर्ण लीला हुई और लीला होने के बाद में राजा को एक थोड़ा सा संशय होता है, हमारे जीव का स्वभाव है संशय करना, संशय ये होता है। ये भगवान सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि जो भगवान का जो अवतार हुआ था संस्थापनाय धर्मस्य, भगवान का अवतार हुआ था धर्म की संस्थापना के लिए, प्रशिमाय तरस्य च, दुष्टों के निवारण के लिए वो अवतार हुआ था। अवतीर्णो हि भगवान अंशेना जगदीश्वर, ये प्रश्न होता है राजा के मन में कि भगवान का अवतार तो इसलिए हुआ था धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, तो ऐसा भगवान ने इस प्रकार का कार्य क्यों किया, होता ना मन में एक संदेह पैदा होता है। ये सामान्य से दिखने वाला कार्य, कल हमारे जो ये बालक है ना वो भी भगवान का नाम लेकर के, तो मैंने भी थोड़ा ऐसा ऐसा किया तो हमारे कुछ लोगों ने उसको वीडियो बना करके डाल दिया तो बोले महाराज जी को बड़ा आनंद आ रहा है, वहां पर आनंद तो आना है। और हमारा जो विजय भाई है कहां गया, उसने तो बोला कि मेरी इच्छा हो रही थी कि आपको नीचे लाओ, अरे हमने कहा मैं व्यासपीठ पर बैठा था। किस प्रकार का आनंद भगवान कभी देते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि भगवान तो अवतरित हुए थे धर्म की रक्षा के लिए, और भगवान ने कहा भी कि दाए दाए धर्मश्य, ग्लानिर्भवति भारत, जब जब। और ये भी एक प्रकार के ये आपके स्वरूप की रक्षा अगर भगवान करता है तो आपकी स्वरूप की रक्षा करता है। और हमारे जीवों के बीच में ऐसी शंका जब पैदा होती है तो सुखदेव जी महाराज करते हैं कि ऐसा देखने में आता है। क्या देखने में आता है? धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो धर्म का व्यतिक्रमण करते हुए ईश्वरांच साहसम, ईश्वर साहस करता है। जितना भगवान की लीला में हम लोगों ने जो श्रवण किया, जो नहीं किया, कालिया लीला, कालिया मर्दन और वड़वानल नाम का वहां पर अग्नि प्रकट हुआ था, उसने भगवान ने उनको उसको ग्रहण किया। ऐसा कौन काम कर सकता है? ईश्वर ही कर सकता है। तेजस्याम न दोषाय, बोलते हैं जो तेजस्वी होता है उसको दोष नहीं लगता है। सर्वभुजो वन्ने सर्वभुजो यथा, जैसे वन्नी जो अग्नि है वो सब कुछ खा लेती है, सब कुछ जला देती है, परंतु उसका उसको कोई दोष नहीं लगता है। लगता है कोई? अग्नि में आप कुछ भी डालो वो स्वाहा हो जाता है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता है। और कभी कभी ऐसा विचार करते हैं कुछ लोग कि जैसा वो करता था वैसा हम भी कर लेंगे। भगवान ने अग्नि पान कर लिया तो तुम अग्नि पान करके देख लो। हमारा एक बालक कल कर रहा था, लेकिन वो एक छोटी सी बात है। उसको बोलो कि बड़ा गैस का जो चूल्हा जला और उसको जला के देखो तो उसको क्या होता है देख लेते। एक वो एक केवल एक निमित्त मात्र, परंतु ईश्वर सब कुछ कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ईश्वर का वो स्वभाव है। इसलिए ऐसा दूसरा व्यक्ति ऐसा न करने का प्रयत्न करे, क्योंकि उससे उसका क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं है। परंतु भगवान ये जो कार्य करता है उसके उसके पीछे कई उद्देश्य होते हैं। हमें लगता है कि केवल वहां पर लीला की नृत्य किया, यहां पर कुछ विश्लेषक कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान का नृत्य था वो इस अपनी जो धरती अपनी प्रकृति उसको पुष्ट करने के लिए था। ये प्रकृति किसकी है? उस दिन मैं कह रहा था भूमि रापो नलो वायु संबद्ध, तो यो भूमि रापो नलो वायु, तो जो ये भूमि है ये वायु है आकाश है वो किसका है? परमात्मा का है। और जो परमात्मा को इसको शुद्ध रखना होता है तो क्या करता है? कोई ऐसी लीला करता है। भगवान उस समय नृत्य कर रहे थे ना, रात में नृत्य कर रहे थे। और आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ पर जो नृत्य हो रहा था उसमें आपके जो चरण है आपके जो पैर है वो पृथ्वी पर पड़ते हैं ना। नृत्य करते समय और लयिक ताल के साथ में नाचा जाता है। कैसे? ताल भी हो और लय भी हो और यहाँ से स्वर भी हो, स्वर होना चाहिए। जब स्वर आता है उसके अंदर फिर ताल आता है। जब ताल पड़ जाए तो जो अपनी माताएं होती है ना उनका भी चरण वहां पर जल्दी पड़ता रुकता नहीं है, वो भी थिरकने को तैयार हो जाता है। स्वर आया फिर ताल आया और उसमें लय आता है। जब लय होता है संगीत में लय होता है, और जब ताल लय और जब उसके अंदर जब स्वर आता है उस समय अपने अनायासी उस समय वो नृत्य शुरू होता है। और भगवान ने नृत्य किया, अपने चरणों को पृथ्वी पर घुमाते हुए उन्होंने उसको पुष्ट करते हुए भगवान ने अपने चरणों के द्वारा पृथ्वी भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, भूमि को सर्वप्रथम उन्होंने पुष्ट किया, क्योंकि तब तक यहां पर भार बढ़ गया था और भूमि कभी कभी भार महसूस करती है। भार भगवान को उसको भूमि भगवान की है, इसलिए उसको पुष्ट करना आवश्यक था। भगवान ने सबसे पहले भूमि को पुष्ट किया। और जब नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते भगवान को पसीना आ रहा था, आता है ना पसीना, इसी चल रहा था, लोग पसीना पोंछ रहे थे, तो भगवान ने वो पसीने के द्वारा उनके अंदर जो है उस जल को पवित्र किया, जल को पुष्ट किया। और जब भगवान नृत्य कर रहे थे उस समय उनके शरीर से गर्मी उत्पत्ति हो रही थी, उष्णता आ रही थी, उन्होंने उनको अग्नि को उन्होंने पुष्ट किया। और साथ साथ में नृत्य करते करते, ऐसा कोई बैठ करके नृत्य करे तो डांडिया लेते हैं हाथ से, नृत्य करते करते जो हाथ हिलते हैं, और उस समय भगवान ने आकाश को उस समय पवित्र किया और अपनी जो गति थी उसने उन्होंने आकाश को निर्मल किया और पुष्ट किया। उस प्रकार जो आपने उनकी जो प्रकृति है उसको भगवान ने पुष्ट किया, और पुष्ट करने के बाद में इस प्रकार की बात कहते हुए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की अनेक लीलाएं हुई, और अनेक लीलाओं के साथ में भगवान ने विचार किया कि अब कुछ ही दोनों बाद में मुझे प्रस्थान करना है। पहले गोकुल से वृंदावन आए हैं, अब वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान करना है, परंतु जाना कहां कि जहां आगे लीलाएं करनी है, आगे लीला करने के लिए भगवान को जाना है। वो लीलाधारी भगवान है, हमारे जो बालकृष्ण हैं वो एक जगह बैठने वाले नहीं है, ना एक काम करने वाले हैं, उनको अनंत काम करना है, इसलिए उनको आगे जाना है। और उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि भगवान बाबा अपने को कुछ यात्रा करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुक, गोपाल भगवान सब अपने गाड़ियों को वहां पर छपड़ों को जोड़ करके, और उन्होंने तस्ते से अंबिकावन बोलते अंबिकावन की यात्रा की। अंबिकावन कहां पर है, कहां मथुरा, और अंबिकावन अंबाजी, अंबाजी आ रहे हैं, वहां नजदीक में नहीं अंबाजी आ रहे हैं, क्योंकि उनको आगे की लीला करनी है, इसलिए भगवान अंबिकावन की यात्रा करते हैं। और वहां पर भगवान पशुपति और भगवती का वहां पर निवास है, इसलिए वहां पर भगवान ने कहा कि हे नंद बाबा, हे बाबा अपने को यात्रा करने की, और यात्रा के लिए नंदिकावन का जो अंबिकावन का प्रस्थान करते हैं, और वहां आकर के सरस्वती में स्नान करते हैं, और सरस्वती में स्नान करने के बाद में भगवती की पूजा करते हैं। उनकी अभिन्न शक्ति जो है वो माता है, इसलिए उसको भी प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि आगे लीला करनी चाहिए। लीला को केवल शक्ति ही करा सकती है, वो पूर्ण परमेश्वर कभी लीला नहीं करता है, जब तक उसके साथ में शक्ति नहीं जुड़ेगी तब तक वो लीला नहीं कर सकते, इसलिए उनको लीला करने के लिए भगवती का उन्होंने आश्रय लिया, भगवती की पूजा की, और उस समय भगवती की प्रार्थना कुछ की होगी, तो हम लोग भी उस प्रार्थना को थोड़ा सा भजन के रूप से सुने।
अम्बा अभय पद दायनी रे, 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 श्यामा साम्र जो साध वीर भजनी, 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 अम्बा अभय पद गायनी रे, अम्बा अभय पद गायनी रे, हे महि डोरे चुके रे, हे महि डोरे चुके रे, आवे आठम दीना कबीर भजनी आवे आठवनी कबीर भजनी आवे आठवनी कबीर भजनी आवे आठवनी कबीर भजनी अम्बा अभय पद धायरी रे वीर भजनी अम्बा अभय पद धारिणी रे अम्बा अभय पद धारिणी रे अम्बा अभय पद धारिणी रे सिद्धि दे आसना निधि दे सिद्धि दे अश्रव निधि दे वंश में वृद्धि दे तो बागवानी हृदय में ज्ञान दे पीत में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर सास जानी सज्जन को हित दे तुम शोक दे जग माजी दे तो माम हमारी मारी जग मात दे भाई अम्बा अभय पद धारिणी रे अम्बा अभय पद धारिणी रे श्यामा सवण जो सास भीर भजनी 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 अम्बा अभय पद धारिणी रे अम्बा अभय पद धारिणी अम्बाय भय पद धारिणी रे अम्बाय भय पद धारिणी
रे। भगवती की आराधना की। उस दिन शिवरात्रि थी, उपवास करके सभी लोगों ने भगवान की पूजा की, वंदन किया। रात्रि हुई, रात्रि काल में खोए हुए थे और रात्रि के समय में एक घटना घटती है और वहां पर एक बड़ा भारी अजगर रहता था। रात्रि के समय वो बड़ा भूखा था, उसने आकर के नंद बाबा को उसने ग्रस लिया। नंद बाबा को उसने निगलने लगा और तभी सर्पो माम ग्रसते तात, हे पुत्र मुझे सर्प निगल रहा है, प्रपन्नम परिमोचय, मुझे बचा लो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं, उनका स्पर्श उस अजगर से होता है और अजगर से वो अजगर वहां पर देवता के रूप से प्रकट होता है। सुखदेव जी पूछते हैं कि सर्प बोलता है कि जो मेरा ये शरीर है, मैं पहले बहुत सुंदर मैं एक देवता था, मेरा नाम विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन, मैं बड़ा सुंदर था, मेरा रूप, मैं विमान से कहीं पर चराचर में घूमता था और एक दिन मैंने किसी कुरूप ऋषि को देखा और कुरूप ऋषि को देखा और मैंने उनकी हंसी उड़ाई और हंसी उड़ाई इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू अजगर बन जा। परंतु विद्याधर था, वो बुद्धिमान था, उसने पुनः उस ऋषि की चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ के कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा कि अब आने वाले समय में भगवान का अवतार होगा और वो तुम्हें स्पर्श करेंगे, उसके बाद तुम्हारा जो स्वरूप है वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान अपनी लीला धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और यहां पर एक युगल गीत आता है। युगल गीत जो भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए वन में जाते हैं और वन में जाते हुए भी गोपिकाएं देखती हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे प्रियतम वन में गए हैं और उनका ध्यान करते, उनका चिंतन करते और उनका चिंतन करते करते उनका पूरा दिन उनका उसी में जाता है कि भगवान गए हैं, गौ चरा रहे होंगे, कैसा उनका क्या स्वरूप होगा, क्या कर रहे होंगे, इस प्रकार उनका। और उसी में यहां पर कहते हैं कि एक युगल गीत बना है और ये युगल गीत, और उसी समय कंस अनेक वहां पर राक्षसों को भेज रहा था और उसमें एक अरिष्ट नाम का एक राक्षस था, वो बैल का रूप धारण करके वो ब्रज में आता है और वहां पर सबके वहां पर बड़ा भारी बैल था और उसने आकर के वहां पर तहस नहस करना शुरू कर दिया। सब लोग त्राही माम त्राही माम त्राही माम करने लगे और उस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उस बैल को पकड़ करके उसको जहां उसको भेजना चाहिए था वहां उसको भेज देते हैं। अरिष्टे निहते दैत्य, अरिष्ट का वध हुआ और कृष्णोद्भुत कर्मणः, अद्भुत कर्म ये, और कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शनः। ये सब कथाएं हुई, अनेक राक्षसों का वध किया और अब नारद जी को लगा कि अब अधिक देर तो नहीं करनी चाहिए बतलाने में। नारद जी कंस के सभा में जाते हैं और कहते हैं कि हे कंस तुम्हें कुछ पता है? कंस ने कहा कि क्या बात का? बोले कि तुमने कहा कि यशोदाया सुताम कन्याम, अरे यशोदा की तो जो कन्या हुई थी वो। तो नारद जी भेद खोलते हैं, देखो संत भेद खोल देते हैं, ब्रह्म क्या है और माया क्या है ये संत भेद खोलते हैं। और नारद जी जैसे संत और कौन हो सकते हैं जो जन कल्याण के लिए वो त्रिकास कहीं भी त्रिलोक के में कहीं भी वो विचरण करते रहते हैं। किस लिए? एक तो मुख में नाम भगवान का और दूसरा जन कल्याण, जीव के कल्याण के लिए। यशोदाया सुताम कन्या देवक्यः कृष्णमेव च, और वो तो जो है रामंच रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विभ्यतः, अरे तो बलराम और कृष्ण तो ये वसुदेव और देवकी के पुत्र है। कंस कहता है कि ये तो मैंने पहले जो कहा था उस समय मुझे तो देवकी ने कहा थे कि हे भैया हे भाई तुम्हारी यहाँ पर तो भांजी पैदा हुई है, कोई पुत्र तो हुआ नहीं है। वो तो ऐसे कैसे बोले मुझे भी, बोले तुमको तो उस समय उनको बेवकूफ बनाया तुमको, इसलिए वो जो वसुदेव जी का जो पुत्र है वो तो कृष्ण है और वही बलदेव है। और उस समय जैसे उसने ये सुना, उसने कहा कि मैं अभी वसुदेव का और देवकी को मार डालता हूँ। भगवान ने नारद जी ने कहा कि अगर अभी ऐसा कृत्य करोगे तो जो तुम कुछ दिन और जीने वाले हो वो भी तुम्हारी मृत्यु अभी आ जाएगी, इसलिए तुम ऐसा काम मत करो। और उस समय देवकी को और वसुदेव जी को बंदी गृह में डाल दिया। और उसने विचार किया कंस ने कि बलराम को और कृष्ण को अपने यहां पर बुला करके फिर हम लोग उनको यहां पर ठीक से उनको उनकी सेवा करें। सेवा का मतलब है कि उनको हम यहां पर अपने कोई किसी भी प्रकार से उनका हम वध कर सकते हैं। बोले कि अब इसको कैसे बुलाया जाए, कैसे उसका कोई ना कोई होना चाहिए। अगर कोई राक्षस बुलाने जाएगा तो उसका जैसे पहले राक्षसों का हुआ वही होने वाला है, राक्षस तो कोई बुला नहीं सकता है। इसलिए कोई भगवान का भक्त ही हो उसको वहां पर भेजना चाहिए। और वहां पर मथुरा में एक भगवान के भक्त हैं, क्या नाम है, अक्रूर जी, अक्रूर जी को बुलाया। और अक्रूर जी को बुला करके उन्होंने कहा कि हे अक्रूर जी आप एक मेरा काम करें। कहते हैं कि गच्छनंद व्रजम तत्र सुतावानुकुलो नंद आसुतोता ने दशे नाने नवाचित। बोलते हैं कि आप यहां पर जाओ, व्रज में जाओ और व्रज में जाकर के उनको ला करके यहां पर ले आना और हम लोग यहां पर एक उनके लिए आयोजन करेंगे, क्योंकि हमारी जनता है इसलिए आप जाए और व्रज से भगवान श्री कृष्ण को, वो तो भगवान नहीं बोलता है, कृष्ण को और बलदेव को और साथ साथ में वहां पर जितने ब्रजवासी हैं उनको सबको आमंत्रण दे के आओ और उनको यहां पर बुलाओ। कहते हैं कि उस समय भी भगवान ने और नारद जी ने इतना कह करके नारद जी नारायण नारायण करते हुए वो निकल जाते हैं। और उस समय जब अकुर जी विचार करते हैं कि आज मुझे अच्छी सेवा मिली है कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, भगवान का दर्शन जब प्राप्त हुआ होगा तो अक्रूर ने उस रात्रि में विचार किया कि मेरा ऐसे कौन से कर्म है। अक्रूरोपी चताम रात्रि मधुपुर्याम महामति उषित्वा रथमास्ताय प्रयायो नंद गोकुलम। उस रात्रि को विश्राम किया, प्रातः का स्नान किया और स्नान करने के बाद में अक्रूर जी ने रथ को सजाया, रथ पर घोड़े उनको लगाया और उनको लेकर के वो चलने लगे और धीरे धीरे वो व्रज की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे व्रज आने वाला है तो व्रज आते आते उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ भगवान के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं। भगवान के चरण चिन्ह देख करके अक्रूर जी रथ से उतर जाते हैं और रथ से उतर करके अक्रूर जी देखते हैं कि वहां पर चरणों को स्पर्श करते हैं और चरणों को अपने मस्तक पर धूलि चढ़ाते हैं। ऐसे अक्रूर जी जहां जहां भगवान के चरण देखते हैं वहां पर नीचे उतारते हैं। और ये तो भक्तों का स्वभाव होता है। और उस समय ऐसे करते करते सायंकाल हुई। लोग कहते हैं कि मथुरा से तो व्रज नजदीक है और वहां पर घोड़े भी ऐसे जो वायु योग से चलने वाले, ऐसा रथ भी स्वर्णमय था, फिर भी सायंकाल तक क्यों हुई सायंकाल। इसलिए कहते हैं कि जो अक्रूर जी भगवान के चरण का स्पर्श करते, उनको वंदन करते और वो चरण धूलि अपने मस्तक पर लेते, इसलिए सायंकाल हो गई। जब सायंकाल हो गई और तब तक अक्रूर जी व्रज में पहुंच जाते हैं और उन्होंने एक दृश्य देखा। ददर्श कृष्णम रामं व्रजे गोहनम गतो। भगवान कृष्ण और भगवान बलदेव जी वहां पर गौशाला में गौ की सेवा कर रहे थे। गौशाला में देखा नीलांबर धारण किए हुए बलदेव जी हैं और पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण है, और दोनों किशोरो श्यामलो श्वेतो, दोनों का जो वर्ण है एक श्याम वर्ण के हैं और एक श्वेत वर्ण के हैं, दोनों का वर्ण बताया। एक सुंदर सावले सलोने हैं जो भगवान श्री कृष्ण है, और दोनों को वहां पर जाकर के मिले और मिलकर के और उन्होंने उनको उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में रात्रि काल में वहां पर बैठे उनका स्वागत किया, उनको भोजन कराने लगे, और उस समय उन्होंने कहा कि हे भगवान कृष्ण ब्रजदेव जी, जो हमारा राजा है जो कंस, वो बड़ा दुष्ट है और उसने हमारे यदुवंशी का जीना उसने मुश्किल कर दिया है, इसलिए हम आप चाहते हैं कि हम वहां पर, आप तो पहले उनकी कुशलता पूछी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप वहां पर, उसने मुझे दूध बना करके यहां पर भेजा है और आपको वहां पर मथुरा चलना है, अगर नहीं चलेंगे तो हमारे जितने वहां पर यदुवंशी हैं वो संकट में पड़ जाएंगे। नंद बाबा को बात कही, और जब नंद बाबा को बात कही, यशोदा मैया अंदर बैठे बैठे श्रवण कर रही थी कि अब कृष्ण ये जाएगा मथुरा और शायद अब वापस नहीं लौटेगा। पहली बार पता लगा कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो देवकी का पुत्र है। मन में वेदना होने लगी कि मैं ऐसे कैसे मानूं कि ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि बचपन से मैंने इसको देखा है, जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर के अभी तक 11 वर्ष के कुछ अधिक आयु हो चुकी है भगवान श्री कृष्ण की, मैं कैसे मानूं कि मेरा पुत्र नहीं है। और रात्रि के समय बीत गया और रात्रि का समय बीत गया और सबको नंद बाबा ने कहा कि कल सब तैयार हो जाओ और कंस के लिए अपने अपनी कुछ सामग्री ले लो तो उसको भेंट चढ़ाने के लिए, और प्रातः काल हुई है, और प्रातः काल जब हुई है और सब गोपिकाओं को पता लगता है कि हमारे कृष्ण आज यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने सुना सब लोगों ने अपनी लज्जा त्याग दी। अब अगर कृष्ण यहां से जाएंगे तो हमारे लिए शेष क्या बचेगा, जब शरीर में से जो प्राण चला जाता है तो शेष बचता क्या है, इस प्रकार हमारी गति होगी, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि कृष्ण को न जाने दें। सभी गोपिकाएं वहां पर आती हैं और सभी गोपिकाओं ने आकर के वहां पर एकत्रित होकर के भगवान के लिए प्रार्थना करने लगे। इधर यशोदा मैया भी विचार करती है कि आज कृष्ण जा रहा है, शायद वापिस आए न आए। भगवान ने कहा कि हे मां, मैं अवश्य लौट करके आऊंगा, परंतु हृदय होता है ना, हृदय वो पहले से बता देता है भावी क्या होने वाला है। मां का हृदय है, उसने विचार किया कि ये कृष्ण वापस आने वाला नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण को पास में बुलाया, तुम जा क्यों रहे हो। भगवान बोलते हैं कि हे माता, जिस कार्य से मुझे मैं आया हूं उस कार्य को करने के लिए तो जाना पड़ेगा। यशोदा ने कहा, ये कृष्ण मेरे से कोई तुमको दुख तो नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें रोज रोज मैं गौ चराने के लिए वन में भेजती हूं, हर तुमको मैंने कभी कभी डांटा, तुम्हारे कान पकड़े, और एक बार तो तुमको हमने उखड़ से ही बांध दिया था। देखो भगवान के कृष्ण के कमर में ऐसा हाथ लगा के देखो, ये तुम्हारे उस समय की जो चिन्ह पड़े हुए है। इस प्रकार की बातें कहने लगी। भगवान ने कहा कि मुझे मां, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आज्ञा दे। मां ने आज्ञा दे दी, परंतु कहा कि अब कम से कम तुम ये जो जाते समय ये मिश्री और माखन तो खाते जा। भगवान ने मिश्री और माखन लिया और वहां से बाहर आए, और तब तक गोपिकाएं वहां पर जब आई, जब गोपिकाएं उनको पता लगा कि अब भगवान यहां से मथुरा प्रस्थान करने वाले हैं, और उसी समय एक हमारे दयाराम जी कवि हैं, कवि थे पहले, चांदवद में हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है। शब्द थोड़े इधर उधर हैं, परंतु गीत बहुत मार्मिक और बड़ा ही भावुक गीत है। उस हम दयाराम जी के शब्द हम लोग श्रवण करें।
अक्रूर जी वो कुर्मशा बाते आया, अक्रूर जी वो कुर्मशा बाते आया, अक्रूर जी वो कुर्मशा बाते आया, वो कुर्मशा बाते आया। मारा सुखड़ा दूर करीने, मारा सुखड़ा दूर करीने, दुख ना दरिया लाया, गोकुल मशा माते आया, अक्रूर जी गोकुल मशा माते आया। अमारो जीवन छे ने कृष्ण, मारो जीवन छे ने कृष्ण, अमारो प्राण कृष्ण, अमारो जीवन छे ने कृष्ण, अमारो कृष्ण विनानो जीवन मारो, कृष्ण विनानो जीवन मारो, थई गयो संसार अक्रूर जी गोकुल मशा बाते आया, अक्रूर जी गोकुल मशा बाते आया। मारा सुखड़ा दूर करीने, मारा सुखड़ा दूर करीने, दुख ना दरिया लाया, अक्रूर जी गोकुल मशा बाते आया, अक्रूर जी गोकुल मशा बाते आया। कृष्ण विना गीत कौन तो गासे, कृष्ण बिन माखन कौन तो खासे, कृष्ण बिन माखन कौन तो खासे, कृष्ण विनानी काया मानी, कृष्ण विनानी काया मारी, बड़ी बड़ी हाशे रात अक्रूर जी गोकुल मशा माटे आया 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 मारा सुखड़ा दूर करीने मारा सुखड़ा दूर करीने दुखना दरिया अक्रूर जी गोकुल मशा माटे आया अक्रूर जी गोकुल मशा माटे आया अक्रूर जी गोकुल मशा माटे आया।
कुछ भक्त अपने भाव शब्दों से प्रकट करते हैं, कुछ भक्त अपने भाव हृदय से प्रकट करते हैं, और जब हम लीलाओं को श्रवण करते हैं तो कुछ भक्त अपने भाव अपने आंखों से प्रकट करते हैं। उस समय गोपीबाओं के भाव ऐसे थे कि जैसे हृदय से कोई प्राण निकाल रहा हो, कोई शरीर से कोई प्राण निकाल रहा हो। जैसे सुना कि अक्रूर जो लेने आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है कि ये अक्रूर न होकर के कोई क्रूर है। हे ब्रह्मा, आपने हमें सुंदर सुंदर आंखें दी हैं, जिसके इन नेत्रों के द्वारा हमने उस हमारे कन्हैया को देखा, हमारे ईश्वर को देखा, हम परमात्मा को देखा, वही हमारा सर्वस्व, उसको लेने तुम आए हो। तुम कोई अक्रूर नहीं, तुम तो क्रूर लगते हो। इस समय ऐसी उनके मन में चली रही थी बात, तब तक सब लोगों ने विचार किया कि चलो हम लोग भी रोक करके देखते हैं। सब गोपिकाएं मिली हैं और वहां पर गोपिकाओं ने मिलकर के उन्होंने एक यहां पर सुंदर एक सुखदेव जी महाराज श्लोक लिखते हैं। एवं रुवाणम विरहात वशाम व्रजश्रिया श्री कृष्ण विषक्त मानसः। विषक्त मानस का मतलब है कि अत्यंत दुखी हृदय से वहां पर सभी गीत गाने लगी, हे भगवान अब न जाओ न जाओ न जाओ। और उस समय उन्होंने अपनी लज्जा को भी त्याग दिया। विसृज्य लज्जां रुरुदः सुस्मरं, क्योंकि वहां पर कुछ लज्जा होती है, लज्जा तो त्याग दी थी, परंतु वहां पर जोर जोर से के बजाय वहां पर कहते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने रुदन शुरू कर दिया, परंतु रुदन वैसा नहीं जैसा रुदन होता है। उन्होंने उनका स्मरण करते हुए रुदन शुरू कर दिया। गोविंद दामोदर
धर्माधरेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान का नाम स्मरण कर रही है और धीरे धीरे रो भी रही है, और उस समय उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण वो माता यशोदा का प्रसाद लेकर के वहां से मिश्री और माखन खा करके बाहर आ रहे हैं, और सब लोगों ने उनसे प्रार्थना की, सभी गोपिकाओं ने, भगवान मत जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, पर तुम भगवान का कार्य कभी रुकता नहीं है, भगवान अपने लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। भगवान ने धीरे धीरे आगे बढ़े, नंद बाबा साथ में है, गोप वृंद साथ में है, गोपा को कुछ पता नहीं लग रहा है क्योंकि आज उनके साथ में जा रहे हैं, केवल अगर उसका विरह है, वेदना है, उसकी पीड़ा है तो गोपिकाओं को है, और गोपिकाएं वहां पर देख रही है, और एक माता यशोदा को है कि आज हमारे कन्हैया जा रहा है, लौट के आएगा कि नहीं आएगा ये पता नहीं है, परंतु अगर लौट के आया तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं चुरु अन्न खा करके मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। उसके बाद में यशोदा मैया मौन हो गई है, उसके बाद में उनके कोई शब्द नहीं निकले हैं, केवल कृष्ण ही नाम उनके मुख से निकलता है, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण रथ में आरूढ़ होने के लिए निकलते हैं, और जैसे आरूढ़ होने के लिए निकलते हैं तो सब बाल गोपाल वहां पर जय जयकार कर रहे हैं। नंद बाबा ने अपने छकड़े वहां पर अपनी गाड़ियां निकली हैं, उन्होंने अपने कोई सामान रख लिए हैं और धीरे धीरे आगे निकलते हैं, और अक्रूर जी रथ में सवार होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी रथ में बैठ जाते हैं, और रथ धीरे धीरे अग्रसर होता है। कुछ देर रथ को पकड़ करके गोपिकाएं चली हैं, परंतु रथ थोड़ा सा जब आगे जा और तेज चलने लगा, उस समय उन्होंने रथ को छोड़ा है और अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया है, और रथ आगे बढ़ रहा है, और धीरे 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 जब रथ आगे बढ़ता है, उस समय थोड़ा रथ थोड़ा दिखना बंद हो गया, और उसके बाद में रथ की केवल धूली दिखने लगी, और उसके पश्चात रथ का केवल ध्वज जब दिखने लगा, उस समय उन्होंने अपने मन को भगवान में अर्पित करके अब उसमें कुछ शेष नहीं रहा, और उस समय भगवान वहां से निकल जाते हैं, और भगवान निकल करके और अक्रूर जी ने रथ रोका यमुना के तट पर। अक्रूर जी को भी शंका थी कि मैं इन दो सुकुमार बालकों को ले जा रहा हूं, और दुष्ट कंस इनके साथ में क्या करेगा, और सब मेरे पर आएगा, ब्रजवासी कहेंगे कि एक अक्रूर आया, अरे हमारे कन्हैया को लेके गया, और कन्हैया का अनिष्ट होने पर अगर कोई सबसे बड़ा दोषी रहूंगा तो मैं ही रहूंगा। उनके मन में एक शंका हुई कि ऐसा न हो कि मेरे से कोई अनिष्ट हो जाए, और यही चिंतन करते करते अक्रूर जी ने वहां पर स्नान के लिए प्रवेश किया यमुना जी में, और जब यमुना जी ने प्रवेश किया और उस समय उन्होंने एक वहां पर गोता लगाया यमुना जी में, और भगवान को था कि ये अक्रूर जी मेरा पूर्ण भक्त है, समर्पित भक्त है, इसके मन की शंका दूर करनी चाहिए। और जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, देखा कि एक रथ वहां पर भी है और एक रथ वहां पर दो बलदेव और कृष्ण भगवान वहां पर विराजमान हैं, ऐसा जैसे ही दृश्य देखा, उस समय उनको लगा कि मुझे कोई ना कोई शंका हो रही है, मुझे कोई ऐसा स्वप्न जैसा दिख रहा है, और उस समय वो बाहर आए जल से और देखा कि रथ की तरफ तो वहां भी दोनों बैठे हुए हैं, फिर दूसरी डुबकी लगाए, फिर तीसरी डुबकी लगाए, वही की वही दृश्य उनके सामने आए हैं। अब उनको लगा कि ये पूर्ण परब्रह्म है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए वो मन की शंका दूर हो गई, और जैसे ही मन की शंका दूर हो गई और भगवान को बहुत बहुत वहां पर स्तुति किया है, और भगवान को लेकर के सायंकाल के समय में भगवान बलदेव जी और मथुरा में प्रवेश करते हैं, और तब तक नंद बाबा और बाकी गोपाल भी आ जाते हैं, और उस समय शाम को अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान आप आज हमारे घर में चलो। भगवान ने कहा कि मैं किसी और कार्य से आया हूं, इसलिए आज तुम्हारे घर में नहीं, मैं यहां पर जो अमराई है, जो वन है, यहीं पर रह करके मैं आज निवास करूंगा, और यहां पर निवास करने के बाद में कहते हैं कि कल हम लोग यहां पर मथुरा नगरी को देखने के लिए निकलेंगे। और उसी समय भगवान ने कहा कि नंद बाबा आए, सब गोप आए, और सब लोगों ने वहां पर पुनः भोजन बनाया है। भोजन उस समय क्या था कि गौरस लाए थे, खीर बनाई और सायंकाल खीर बना करके वहां पर वन में ही उन्होंने निवास किया। और वन में निवास करने के बाद में दूसरे दिन प्रातः काल से स्नान ध्यान करके निकले और वहां से निकल करके अब बोले कि चलो हम लोग मथुरा नगरी को देखते हैं, भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक वन में निवास करने वाले जो उनके जो साथी थे सबके वस्त्र जैसे रहे होंगे और वन में जैसे ही वहां से वन से आए और मथुरा में जो प्रवेश किए, मथुरा में जो प्रवेश किया भगवान ने, तो वहां की नारियों ने भी सोचा था, उन्होंने सुना था कि भगवान कृष्ण है, बहुत माधुर्य उनका रूप और उनका गुण है, उनके गुणों को सुना था, परंतु आज उनको देखने में भी आ रहा है। और उस भगवान श्री कृष्ण को सभी की सभी वहां की देवियां देख रही है और देखा आगे बढ़े हुए हैं, तो भगवान ने एक किसी दासी को आते हुए देखा, ऐसे भगवान ने देखा तो वो कुब्जा थी, उसके हाथ में एक थाली थी, उसमें सुंदर सुंदर चंदन आदि थे। भगवान ने कहा कि ये क्या है, उसने कहा कि ये तो मैं कंस की दासी हूं और मैं उसके लिए चंदन अगर उनके लिए ले जाती हूं, तो कहा कि अब हमें भी लगा दो, हमने स्नान तो किया है लेकिन चंदन नहीं लगाया है। तो भगवान ने उस दासी से चंदन मांग के लिया, उस दासी ने भगवान के मस्तक पर चंदन का टीका किया, परंतु तीन जगह से वो कुबड़ी थी, वो कुब्जा थी। भगवान ने कहा कि कुछ आशीर्वाद देना चाहिए, तो आशीर्वाद क्या देना चाहिए? भगवान ने विचार किया कि उसको क्या आशीर्वाद देवे, अगर किसी कुरूप को अगर सुंदरता मिले तो उसको और क्या चाहिए। भगवान ने अपने अंगुष्ठ से उसका अंगूठा दबाया और एक अंगुली से एक डोरी होती है, इस पर उन्होंने धीरे से उन्होंने एक झटका दिया और वो तीनों अंगों से जो टेढ़ी थी वहां पर सुंदर स्वरूप हो गया, वो सुंदर स्त्री हो गई और उसके अंदर कामना पैदा हो गई। जब स्वरूप प्राप्त होता है तो फिर कामना होती है कि ये मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप हमारे घर में चले, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। भगवान ने कहा कि फिर कभी। भगवान वहां से आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और वहां पर एक धोबी जा रहा था जो कंस के कपड़े धोता था। भगवान ने कहा कि क्या है, तो ये कहे धोबी है, अरे धोबी कुछ कपड़े हमें भी दे दो, हम लोग के जो जंगल के कपड़े हैं ये शहर में अच्छे लगेंगे नहीं, यहां पर कोई धोती पहन के आवे तो लगेगा कि गांव से आए ऐसा लगता है, थोड़ा ठीक तो नहीं लगता है ना, हमारा मूल परिधान तो वही है। क्या परिधान है? माताएं साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती पहनते थे, लेकिन शहर में होने के कारण हम बड़े बड़े ऑफिस में जाना पड़ता है तो वहां पर पैंट पहननी पड़ती है। बोले करू पड़े छे ना, ये करना पड़ता है। बोले साधु बनया छे तो हिंदू बोलना पड़ेगा ना, गुजराती भाई साधु बने ताकि वो उनको ना वो गुजराती बोले आम करने छे ना, छे करने के बाद में कहे कि है, बोलने का मतलब है कि उसे हिंदी हो गए, वो करना पड़ा। तो भगवान ने कहा कि हम लोग शहर में आए हैं तो कोई अच्छे वस्त्र होंगे तो लोग हमको अच्छा मानेंगे। तो कहा कि उस धोबी से कहा कि थोड़ा वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा कि कहां से जंगली लोग आए हो, अरे ये तो राजा के वस्त्र हैं। भगवान ने कहा कि मांगने से तो नहीं दे रहा है। और भगवान ने एक उसको थप्पड़ जड़ी, उसका जो सर था वो धड़ से अलग हो गया और सबको कहा कि जो जिसको आता है वो कपड़ा पहन लो। वो जो सुंदर सुंदर कपड़े थे सबको, सभी बालकों ने वहां पर वस्त्र पहन लिए और भगवान ने भी एक सुंदर वस्त्र था उसको धारण किया। परंतु वो तो कहां थे, वो छोटे छोटे बालक थे, ये दैत्यों के राक्षसों के वस्त्र, कोई छोटा कोई बड़ा, अब कोई वस्त्र हो सुंदर स्वरूप हो परंतु वस्त्र कहीं ऐसे वैसे हो तो ठीक लगेगा नहीं। और जैसे ही चल रहे थे उसी समय वहां पर एक दर्जी था, उसने देखा कि तो साक्षात श्याम सुंदर भगवान आ रहे हैं, तो इनको उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि हे आप लोग थोड़ा सा बैठो, उनके पास में अनेक वहां पर दर्जी थे, उन्होंने वस्त्र को ठीक ठाक चलाया और सबको पहनाया। और तिलक धारण किए हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, और अगर भगवान का श्रृंगार न हो तो वहां पर सुदामा नाम का एक माली था, उसने कहा कि भगवान आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको माला पहना दी। और माला पहनाने के बाद में भगवान ने उनको सबको अपना निज स्वरूप दे दिया, उन्होंने अपना मोक्ष प्रदान कर दिया। और भगवान वहां से चलते हैं और अट्टालिकाओं पर, वहां पर मथुरा की स्त्रियां वहां पर खड़ी हैं, कोई भोजन बना रही है, उन्होंने कहा कृष्ण आए हैं, तो उसने भोजन बनाना छोड़ दिया। किसी कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी, और जो अपना ग्रह का काम कर रही थी, सब वहां पर अट्टालिकाओं पर आकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखना शुरू किया। और सब लोगों ने देखते देखते भगवान श्री कृष्ण गोप वृंदों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान चारों ओर गोप हैं और बीच में उनके अधिपति भगवान श्रीकृष्ण चल रहे हैं, और धीरे धीरे वो संपूर्ण वहां पर मथुरा की नगरी की परिक्रमा की। और मथुरा नगरी की परिक्रमा करने के बाद में देखा कि वो रंगशाला कहां बनी है, उसको भी देखना चाहिए। भगवान आगे बढ़ते हैं, जहां रंगशाला में दूसरे दिन बड़े बड़े कर्तव्य होने वाले थे, और भगवान ने विचार किया और वहां रंगशाला में देखे तो वहां पर भी जैसे पहले सीता स्वयंवर के लिए एक वहां पर बड़ा धनुष रखा हुआ था, यहां पर भी एक धनुष रखा हुआ था, उसके अनेक वहां पर प्रहरी थे। भगवान ने विचार किया कि हमारे पास समय तो ज्यादा है नहीं, तो सायंकाल हुई और सायंकाल होते ही उसमें प्रवेश जब करने लगे तो वहां के जो सैनिक लोगों ने उनको रोका, उन्होंने एक एक थप्पड़ मार के सबको वहां पर से भगा दिया, कुछ को मार दिया। और भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद में जहां पर धनुष रखा हुआ है, धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंच चढ़ाते हैं, और वो धनुष जबरदस्त आवाज के साथ में भंग हो जाता है, और उसकी आवाज पहुंच जाती है कहां, कंस के कानों में पहुंच जाती है। ये क्या हुआ? कहा कि जो कृष्ण आया है, आपने बुलाया है जिसको, वो रंगशाला में गया है और उसने धनुष उठाकर उसको तोड़ दिया है। और वो कृष्ण के मन, कंस के मन में अब भय उत्पन्न हो गया। रात्रि का समय है, उसने खाया कि पिया कि नहीं, परंतु उसके मन में भय उत्पन्न हुआ, और भय उत्पन्न होने के बाद में वो सो नहीं पा रहा है। उसने रात्रि को कभी नींद आती है, कभी नहीं आती है, और जब ठीक से नींद नहीं आती है उस समय सपने आने लगते हैं, और सपने के समय में वो जो सपने में वो अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से वो कल्पनाएं आ रही है कि मैं चल रहा हूं, मेरी छाया ही नहीं दिख रही है, स्वप्न में मैं तेल में स्नान कर रहा हूं, और तेल में स्नान करने के बाद में उस प्रकार अनेक अनेक प्रकार के उसको उस समय ऐसी ऐसी वृत्ति हो रही है, और उसको कल्पनाएं हो रही है, सपने आ रहे हैं कि जैसे मृत्यु के समय में सपने आते हैं, इस प्रकार उसको सपने आते हैं। इसलिए अपने यहां पर भी जब मृत्यु नजदीक आती है तो कुछ शकुन आते हैं, कुछ अपशकुन आते हैं। अपने संतों ने भी उसके लिए बहुत से उसका अनुसंधान किया है, तो कहते हैं कि जो योगी लोगों ने अनुसंधान किया है, कहते हैं कि जब अपनी मृत्यु नजदीक आती है तो कुछ चिन्ह दिखने लगते हैं। क्या चिन्ह दिखते हैं? योगियों को दिखते हैं, कहते हैं कि जब आपको 6 महीने के भीतर आपको मृत्यु आने वाली हो, तो कहते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो दिखना बंद हो जाता है। ऐसे हम लोग को भी कहां दिखता है, ये उजाले में वो दिखता नहीं, उसके लिए अंधेरे में जाना पड़ेगा, और वो स्थिर है, वो दिखना बंद हो जाएगा। बोलते हैं किसी ने कहा कि महाराज और नजदीक आता हो तो हम लोग सावधान हो जाए, तो और कुछ उसके चिन्ह हो, बोले आपके जो भव्य है ना, भवई जो ऊपर जो आपकी, तो उसको अगर देखना बंद हो जाए तो कहना समझ लेना चाहिए कि आपको आपकी एक 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है। बोले और नजदीक हो तो हम लोग और सावधान हो जाएंगे। अरे सावधान तो है, सावधान तो पहले होना चाहिए। बोले आप ऐसा करो कि अपने कान में अंगुली डाल के देखो, पहले आंख में अंगुली डाल के देखो, वहां पर एक आपको बिंदु दिखेगा। अरे नहीं डालना, बाद में देख लेना। कान में एक तरफ बंद करके उसको अंगुली रख दो, वहां पर एक छोटा सा बिंदु आपको एक वहां पर एक तेज दिखेगा, अगर वो न दिखना बंद हुआ तो समझ लेना चाहिए कि कुछ ही दिनों में राम राम सत्य होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाओ। बोले और कुछ नजदीक का कोई हो तो कहे कि और ये है कि आप अपने कान में अंगुली डालो और वहां एक नाद आता है अभी वो करके देख सकते हो, कान में अंगुली डालो और आपको वहां पर एक नाद आएगा, अगर नाद बंद हो गया तो समझ लेना चाहिए कि 24 घंटे रह गए, लेकिन उस समय 24 घंटे पहले वो चेतना होनी चाहिए, ऐसा अपने पास में शुभ विचार होना चाहिए। और कभी आपकी नासिका न दिखे तो समझ लेना चाहिए कि अब जल्द ही अपने प्रस्थान करने वाले हैं। इस प्रकार के अनेक ऐसे जो शकुन है, अब शकुन है वो कंस को दिखने लगे हैं, और कंस को दिखने लगे हैं और प्रातः काल हुई है, और वहां पर जहां पर आयोजन किया था रंगशाला में बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे, और वहां पर ये पुलियाबड़ नाम का एक वहां पर उनका बड़ा भारी एक हाथी था जिसको 10,000 हाथियों का बल था। भगवान अपने वहां से उस जो जहां पर ठहरे हुए हैं वहां से निकले हैं, और निकल करके उन्होंने कहा कि चलो लीला तो करनी है, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए है, तिलक लगाए हुए है, और भगवान सबके साथ में निकले हैं, और सबके जब वहां रंगशाला है पहले तो देख ही आए थे, और वहां रंगशाला के पहले कंस ने पहले से तैयारी करके रखी थी कि जैसे ही कृष्ण आएगा कुलिया पीड़ जो ये हाथी है उसको महावत को बोल दिया कि भगवान कृष्ण को वहीं पर समाप्त कर देना, ऐसी कल्पना से उसने हाथी को वहां पर खड़ा किया था। और भगवान जैसे ही आते हैं भगवान ने कहा कि हे महावत हमें जाने दो, हमें रंगशाला में जाना है। जब कोई राजा का सेवक होता है ना राजा से ज्यादा अभिमानी होता है, उसको ज्यादा घमंड होती है, उसने अपशब्द कहते हुए कहा कि अभी मैं तुमको बताता हूं। और उस महावत ने उस हाथी को भगवान के पीछे दौड़ाया। भगवान ने विचार किया कि लीला को तो प्रारंभ करना ही है, तो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी लीला वहां पर प्रारंभ की और थोड़ा सा आगे दौड़े, और उसके बाद में हाथी के दोनों पैर के नीचे से पीछे आ गए, और भगवान श्री कृष्ण ने वो हाथी का पूंछ पकड़ लिया। जब पूंछ पकड़ ली तो हाथी पीछे मुड़ने में थोड़ा समय लगता है, और पीछे मुड़ने में समय लग गया तब तक भगवान फिर आगे आ जाते हैं, और आगे आगे दौड़ते दौड़ते उस महावत ने क्या किया कि ऐसा लगा कि हाथी को आदेश दिया कि दोनों दांतों से यहीं पर समाप्त कर दो, और बड़े आवेश में आकर के उस हाथी ने दोनों दांतों से भगवान को मारने का यत्न किया, और उस समय उसने जोर से दांतों को भूमि पर लगाया, और भगवान दोनों दांतों के बीच में आकर के वहां पर रुक गए, और उन्होंने दोनों दांतों को हाथ से पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो एक छोटा सा झटका दिया और दोनों ही दांत उनके हाथों में आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बलदेव जी, हमारे पास कोई अस्त्र नहीं था, कोई शस्त्र नहीं था, ऐसा करो कि एक दांत आप रख लो और एक दांत इसको मैं रख लेता हूं, और दोनों ने एक एक दांत जो कुलिया पेड़ का जो दांत था बड़ा सुंदर दांत सफेद सफेद शुभ्र उसका रंग था उसको अपने कंधे पर रख लिया, और कंधे पर रख करके भगवान उस रंगशाला में जहां पर आयोजन हुआ है वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजे बड़े बड़े महाराजे, और वो ऊंचे सिंहासन पर वहां पर कंस बैठा हुआ है, ब्रज से सब ब्रजकुमार आए थे, नंद बाबा आए थे, वहां के सभी ग्रामीण सभी वहां के जो नगरवासी सब वहां पर बैठे हुए थे, और भगवान वहां पर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही प्रवेश करते हैं यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे, और राजा बैठे थे उनको लगा कि और बड़े बड़े पहलवान बैठे थे, पहलवानों को लगा कि साक्षात कोई बलशाली पहलवान आ रहा है। सब लोगों ने देखा कि भगवान का जैसा जैसा स्वरूप था, भगवान वहां पर अपना स्वरूप बताते हैं वो अनुभव करते हैं कि जो जैसा होगा वैसा ही, जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। पहलवानों को लगा कि कोई पहलवान आ रहा है, हाथों में उनके कंधों पर वो हाथी के दांत हैं, और वहां पर बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, उनको लगा कि यहां पर साक्षात कोई महाराजा आ रहे हैं, उन्होंने अपने दृष्टि से भगवान को देखा। वहां पर सी बहुत सी स्त्रियां बैठी थी और वहां पर उनको लगा कि साक्षात ये स्वरूप क्या कामदेव का स्वरूप है, जिस प्रकार भगवान के विषय में। और वहां कहते हैं कि गोपा नाम सजनो अस्तम, बोलते हैं कि वहां पर गोप बालक बैठे थे, वहां पर व्रत से आए हुए सभी नर नारी बैठे थे, उन्होंने विचार किया कि साक्षात हमारा स्वजन है, अपना है, अपनापन महसूस हुआ भगवान को। और बड़े बड़े राजा थे, उनको लगा कि तो साक्षात और शास्ता सुभद्रो शिशु, वहां पर बहुत सी माताएं बैठी थी, माताओं को लगा कि ये तो छोटा सा बालक है, हमारा शिशु है। और नृत्य और भोज जो वहां पर कंस था, उसको लगा कि ये तो साक्षात मेरा काल है। भगवान ने अनेक अनेक वहां पर जो नवरस है, उस नवरस के होकर के उन्होंने अपना दर्शन देना शुरू कर देते हैं। और उसी समय वहां पर बहुत से लोग बैठे थे, उसमें कुछ योगी भी थे। योगियों ने विचार किया कि तत्त्वम परम योगिना, ये तो जो हम लोग समाधि में जिसको देखते हैं वही तत्व तो सामने से आ रहा है। और वृष्टि नाम वृदेवी विदित, जो वहां पर सभी जो बैठे थे वृष्टिवंशी वादो बैठे थे, उन्होंने कहा कि तो हमारे ही अपने हैं, इसलिए अनेक अनेक प्रकार से भगवान ने अपने नौ रथ वहां पर दिखा दिए हैं। और भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं उस मंच पर, वहां पर बैठे हुए सब लोग, और वहां पर कंस ने कहा कि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वहां पर एक आयोजन हो रहा था जिसको आजकल मल्ल बोलते हैं, यहां पर बड़े बड़े मल्ल आए हुए थे, बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। और कंस ने कहा कि तुम हमारी प्रजा हो और प्रजा को राजा का मनोरंजन करना चाहिए, इसीलिए तुम लोगों को यहां पर बुलाया है। और कंस के मन में तो इसी भावना थी कि मैं ये बड़े बड़े पहलवानों से कृष्ण को मैं वहां पर समाप्त कर दूंगा। कंस ने कहा कि आप लोग यहां पर थोड़ी सी कला दिखाओ आपने, हमने सुना है कि आप लोग बड़े सुंदर लड़के हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कंस, ये तो बड़े बड़े भारी भारी मल्ल है, एक मुष्टिक है, चानूर है, ये इनको किसी छोटे, ये तो हम लोग बालक है छोटे छोटे, हम लोग किसी छोटे छोटे पहलवानों से हमको लड़ा दो, हम लोग उनके साथ कुश्ती करेंगे। कंस ने कहा कि अभी अभी हमने सुना था कि जिसके 10,000 हाथियों का जिसमें बल था कुल या फिर उसके दांत को उखाड़ करके उसको मार करके यहां आए हो, तुम कोई छोटे बालक हो। भगवान ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। बलदेव जी को कहा कि आप मुष्टिक से साथ लड़ो, मैं चांदन को देख लेता हूं। और थोड़े थोड़े धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए भगवान ने जैसा अभिनय करते हुए, पहले कभी नीचे गिर जाते, कभी उसको पछाड़, ऐसा होता है जो कुश्ती में ऐसे होता है। और आजकल ये कुश्ती ऐसी होती है कि जिसको खाली दिखावा होता है, उसमें कुछ होता है नहीं। भगवान ने विचार किया कि ऐसा थोड़ा सा अभिनय तो करना चाहिए, सबका मनोरंजन करना चाहिए। मनोरंजन के लिए आया हूं, भगवान हमें मनोरंजन में देता है, दुनिया में सब उसने वो भी बनाया, उसने सबके मनोरंजन के लिए वहां पर धीरे धीरे अपना वहां पर लीला कर रहे हैं। और धीरे कभी नीचे जाते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं। और फिर एक बार कहा कि अब लगा कि थोड़ा सा अब ज्यादा क्या इसमें और लीला करनी, उन्होंने उस चानूर को पहले ऊपर उठाया, और ऊपर उठाने के बाद में उसको घुमा करके नीचे जब धरती पर पटक दिया तो उसके प्राण पखरू उड़ गए। कंस के मन में और भय पैदा हुआ कि इतने बलवान ये पहलवान, जिनको हमने सोचा था कि इसके द्वारा ही इनको समाप्त करेंगे, परंतु इसने तो उन पहलवानों को तो पहले ही समाप्त कर दिया। उसके मन में घबराहट होने लगी और उसी समय भगवान ने कहा कि अब अधिक देर नहीं करनी थी। और भगवान उस जहां पर सिंहासन पर बैठा था कंस, वहां पर चले जाते हैं। भगवान ने कहा कि ये राजा बना हुआ है, इसलिए इसको सिंहासन पर नहीं मारना, राज्य का कुछ नियम होता है। वो तो मुकुट धारण किया हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने एक उसको पहले लाफा चढ़ दिया। एक चपत लगाई, वो मुकुट बाहर गिर गया, आसन पर भी नहीं मारना चाहिए। जो राजासन होता है उस पर भी नहीं मारना चाहिए, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको आसन से भी गिरा दिया। आसन से गिराने के बाद में कुछ प्रतिकार करने लगा, उसने अपनी तलवार निकाली, परंतु तो भगवान को बता था कि मुझे कैसे इसका अंत करना है, और उसी समय भगवान ने उसके छाती पर उतर के कूद के चढ़े और कहा कि तुमने बहुत लोगों को कष्ट दिया है, अब उनका कष्टों का नाश करने के लिए मैं आया हूँ। एक मुष्टि का प्रहार किया है, वहाँ पर कंस के प्राण पखेर उड़ जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया
भगवान की।
भगवान जी से भगवतीय कार्य के लिए आए थे, एक कार्य पूर्ण किया और दूसरा कार्य करने के लिए जाना है, तो उस समय उनके दूसरे 8 भाई थे वो भी आए लड़ने के लिए, और उसके बाद में भगवान सबसे पहले चले जाते हैं अपने माता पिता के पास, और अपने माता पिता के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। भगवान को देख करके उनको सहसा उनको ऐसा लगा कि शायद ये तो साक्षात भगवान है, इसलिए भगवान को समझते हुए उन्होंने उनको अंदर अंदर से ही नमस्कार किया, परंतु अपनी माया फैला दी, अपने माया के द्वारा उनको ये प्रतीत होने के लिए उन्होंने कहा कि आप हमें भगवान मत समझो, हम अपना पुत्र समझो। भगवान वहां पर जाकर के कहते हैं कि पहले तो उनको बंधन से मुक्त किया, और बंधन से मुक्त करने के पश्चात कहते हैं कि माता और पिता को मातरम पितरम चैव मोचित्वात् बंधनात् कृष्ण रामो वदान्ते शिरसा स्पृश्यपादयोः। वहां बलभद्र और भगवान कृष्ण वहां पर जाते हैं और माता पिता के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। ये हमारी परंपरा है, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में माता पिता ने उनको ईश्वर समझ करके देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो, उनको जानते थे साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमेश्वर है, इसलिए इनको हम अपना पुत्र कैसे माने। परंतु भगवान ने अपने माया के द्वारा उनके मन में लाया कि यही वो तुम्हारे पुत्र, ये हमारे पुत्र ही है, इस भाव से उन्होंने उनको स्वीकार किया। और भगवान कहते हैं हे माता हे पिता, पुत्र का तो दायित्व तो ये होता है कि माता पिता की सेवा करे, परंतु कभी कभी संयोग ऐसा आता है कि उस संयोग के कारण, उस परमात्मा की जो एक लीला है उस कारण हम आपसे बहुत दूर रहे। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधिम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, ये जो कुछ चीजें होती है, जो माता है पिता है वृद्ध है उनकी जो सेवा नहीं करते हैं वो ठीक नहीं होता है, इसलिए हमने भी आपके बहुत दिनों तक सेवा नहीं की है, इसलिए हम अब आपके पास में लौट के आए हैं। और इस प्रकार उन्होंने कहा, और पुनः उन्होंने विचार किया कि एक माता पिता जिन्होंने जन्म दिया था, दो माता पिता होते हैं, एक होते हैं जन्मदाता और ये होते हैं पालन करने वाले। भगवान श्री कृष्ण के दो माता और दो पिता हम लोग जानते हैं। भगवान ने विचार किया कि जो दूसरे पिता है उनके पास जाना चाहिए। नंद बाबा आए हुए थे और नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा ने कहा कि हे कृष्ण, अब अपने वृंदावन में चलना चाहिए, व्रत चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे भगवान, अभी अभी तो हमने एक कंस को मारा है और पता नहीं अभी और कौन सी आपत्ति आने वाली है, इसलिए मुझे तो यहां पर कुछ दिन और रहना पड़ेगा। नंद बाबा बोलते हैं कि मैं जाकर के यशोदा से क्या कहूंगा। बोलते बाबा, मेरे तरफ से प्रार्थना करना, मुझे थोड़ा सा कार्य आया है, मैं अवश्य आऊंगा आपके पास में। और उनको खूब वहां पे सम्मान करने के बाद में वहां से विदा करते हैं और आप बोलते हैं कि आप वहां पर चले जाओ। और भगवान परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा है, उसका निर्वाह करने के लिए अभी तक उनका यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं हुआ था। बाकी संस्कार हुए थे, नामकरण आदि संस्कार हुए थे, परंतु यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं हुआ था। और भगवान ने वहां पर यज्ञ पवित्र ग्रहण किया है। ऐसे यज्ञ पवित्र ग्रहण करने का हमारे तीन वर्णों को अधिकार है। ब्राह्मण को 8 वर्ष से पूर्व यज्ञ पवित्र धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को 12 वर्ष के पूर्व, 12 वर्ष तक अपने यहां पर विधान है कि यज्ञ पवित्र धारण करना चाहिए, गायत्री धारण करना चाहिए। और जो वैश्य को 16 वर्ष पर्यंत यज्ञ पवित्र धारण करना चाहिए। और भगवान भी उस नियम का पालन कर रहे हैं, उस नियम के पालन करते हुए भगवान का गर्गर जी ने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार कराया। और यज्ञ पवित्र संस्कार करने के बाद में जाना चाहिए गुरुकुल। यज्ञ पवित्र इसलिए धारण किया जाता है कि वेद की शिक्षा ग्रहण किया जाए। और फिर वहां से उन्होंने प्रस्थान किया गुरुकुल की ओर, और गुरुकुल वहां से उज्जैनी में गुरुकुल के यहां पर जाते हैं। वहां सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी नाम के ऋषि हैं, उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं। और जैसे छोटे छोटे बालक अपने गुरुकुल में रह करके जैसी विद्या ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार भगवान ने विद्या ग्रहण प्रारंभ की। परंतु वहां पर उनके पास उस समय कम था। जो बोलते हैं इसकी 60 कलाएं हैं, 64 कला उन्होंने 32 दिन में ही वो सब कलाओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के बाद में कहा कि गुरुदेव अभी हमें आज्ञा कार्य बहुत हैं। गुरुदेव समझते थे कि साक्षात परब्रह्म हैं, अब कुछ गुरुदक्षिणा। बोले गुरुदक्षिणा तो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, आप तो सर्वात्मा हैं, आपसे हम क्या मांगे। फिर भी मैं पूछ लेता हूं। अपने पत्नी के पास जाते हैं संजीवनी जी, बोलते हैं कि ये साक्षात परब्रह्म है, ये सामान्य नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म है। तुमको भुक्ति मुक्ति जो कुछ मांगना हो, कोई ऐश्वर्य मांगना हो, कुछ भी मांगना हो। माता बोलती है कि भगवान अपने पास में तो संतोष है, बहुत है, अपने पास में कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात की मेरे मन में आती रहती है कि एक मेरा पुत्र था जो समुद्र में स्नान करते करते वो समुद्र में डूब गया था। अगर ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है, तो ये उनको ला करके दे सकते हैं, तो आप वो मांग के देख लो। संजीवन जी आते हैं, बोलते हैं कि भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा हो तो बहुत है। परंतु आपने आपकी गुरु माता, उनके मन में यह है कि उनका पुत्र, हमारा पुत्र समुद्र में डूब गया था, और वो अगर प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर के हमें कोई और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने विचार किया है कि गुरुजी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया, और समुद्र में प्रवेश किया, उनको पता था कि वहां पर एक पांचजन्य नाम का एक वहां पर राक्षस रहता है, वो शंख के रूप से रहता है। भगवान वहां पर गए और उससे बड़ा युद्ध हुआ, और उसको देखा कि इसके पेट में वो बच्चा होगा, उस बालक होगा, और उसको वहां पर मार देते हैं, परंतु वो बालक वहां पर नहीं मिलता है। भगवान ने विचार किया है कि वार व्यर्थ हो गया और निरापराध मारा गया। जब निरापराध मारा गया तो उसके लिए भी अपने को कुछ ना कुछ को प्रायश्चित तो करना चाहिए। वो शंख रूप से रहता था, इसलिए उनको ही भगवान ने उसी शंख को धारण कर लिया। इसलिए आप लोग जब सुनते गीता सुनते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, भगवान ने वो पांचजन नाम का जो राक्षस था वो शंख रूप से रहता था और उसको धारण करके बाहर आए। अब कहां जाए, कहां होगा। बोलते ये जो हमारा गुरुपुत्र है वो निश्चित रूप से यमलोक में होगा। मैंने पहले कहा ना कि भगवान सब जगह यात्रा कर रहे हैं। पहले यात्रा की वरुण लोक की, उसके बाद में वो शिव धाम गए, अम्बा जी के धाम गए, और उसके बाद में अब क्योंकि यमलोक में तो संत देवता पुण्यात्मा वहां पर नहीं जाते हैं, वहां तो कौन जाते हैं, वहां तो जिन्होंने पाप किए होते वही जाते हैं, लेकिन पापियों का भी उद्धार न हो ऐसा कहां लिखा है। पापियों का भी उद्धार होना चाहिए और उनके उद्धार के लिए भगवान कोई ना कोई माध्यम मानते हैं और वहां पर यमलोक पहुंचते हैं और यमलोक पहुंच करके भगवान वहां पर बोलते हैं, यमराज जी को बोलते हैं कि हमारे गुरुपुत्र को तुमने लाया है। यमराज बोलते हैं कि भगवान ऐसे तो यहां पर आप आते नहीं, दीन दुखियों का उद्धार करना आपका कर्तव्य है, आपका स्वभाव है, इसलिए वापिस पुनः उनको कहते हैं कि आपका गुरुपुत्र ले, और गुरुपुत्र को लिया और भगवान ने अपने गुरु माता को दिया और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ये दिया कि तुमने जो विद्या ग्रहण की है वो तुमको हमेशा वो यथावत रहेगी, विद्या तुम्हारी कभी भूलेगी नहीं। विद्या ऐसा होता है कि हम विद्या को रटते हैं परंतु विद्या जब हम लोग विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो विद्या भूल भी चली जाती है, हम उसको विस्रूप हो जाती है। इसलिए आपकी विद्या हमेशा जीवित रहेगी। अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके संदीपने ऋषि ने उनको वापस विदा किया है और विदा करने के बाद में भगवान पुनः वापस आते हैं और अपने जो पूर्व का जो अपना उनका जीवन है गोपिकाएं खास विशेष करके गोपिकाओं का स्मरण करते हैं और स्मरण करते करते उनको स्मरण आया, बैठे हुए एक ऊपर अकेले बैठे हैं भगवान, उनको स्मरण आया कि मैं जब व्रत से आ रहा था मथुरा उस समय जो उनको विरह था व्यथा थी उसको दूर करना चाहिए। अब कैसे दूर करें, अगर मैं वहां पर जाता हूं तो फिर आना कठिन हो जाएगा, इसलिए कोई मेरे समान कोई हो उसको वहां पर भेजना चाहिए। और उनके पास में एक ज्ञानी भक्त है, उनके ज्ञानी भक्त हैं वृष्णीनाम पौरो मंत्री, वृष्णि कुल में ही एक मंत्री है कृष्णश्च दैतः सखा, भगवान कृष्ण के वो दास भी हैं सेवक भी हैं और सखा भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हैं हम लोग, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, सखा भी होते हैं भगवान, साक्ष्य भगवान के साथ में एक संबंध होता है साक्ष्य का सखा भाव, भगवान सखा भी है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धवो बुद्धिसत्तमः, उद्धव नाम के जो उनके शिष्य हैं सखा है दास है उनको बुलाते हैं और उनके हाथ में हाथ रख करके, क्योंकि बहुत अपना काम कराना हो ना, बहुत व्यक्तिगत कार्य हो उसको बाजू में बुलाया जाता है और उसको कान में कहा जाता है कि ये जो मेरा कार्य है इसको ठीक ठीक करके आना। हम लोग देखते हैं किसी मित्र से हम लोग बात करते हैं ना फोन पर, तो चार के लोगों के साथ में करते हैं, चार लोगों के सामने वो बात कर लेते हैं, और किसी शत्रु से बात करनी हो तो और लोगों को ही बुलाते हैं, परंतु जब आत्मीय किसी जन से बात करनी होती है तो थोड़ा कोना खोजते हैं, होते हैं ना, अपने से किसी से बात करनी होती है तो कोना खोजते हैं, और शुरू शुरू में परिचय हो और विवाह होने वाला हो तो फिर कोई नहीं चाहिए, केवल फोन ही हो तो चल जाएगा। इसी प्रकार भगवान ने जो जिनको संदेश देना था वो बहुत आत्मीय थे और विभिन्न अभिन्न थे, अभिन्न होता है जिसने अपना सब कुछ समर्पण किया हो, और ऐसे को संदेश देना था और वो थी गोपिकाएं, और उनको संदेश देने के लिए वहां पर उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी के हाथ में हाथ रखा और उन्होंने कहा कि ये संदेश लेकर के आप व्रज की यात्रा करो, और वहां से वो व्रज की यात्रा के लिए निकलते हैं और वो हम लोग व्याख्यान वो कथा हम लोग सायंकाल के सत्र में हम लोग उसको श्रवण करेंगे। और सायंकाल तो और भी कथाएं हैं, भगवान फिर वो अनेक अनेक विवाह भी करते हैं, और उसमें एक रुक्मिणी जो उनकी अभिन्ना है, उनकी ही शक्ति है, ऐसे उनके साथ उनका सुंदर विवाह होता है, पाने ग्रहण होता है, वो भी हम लोग कथा श्रवण करेंगे। उनके अतिरिक्त उनकी आठ पट्टरानी है और साथ साथ में 16,000 उनकी उसकी अलग व्याख्या है, वो हम लोग सायंकाल उसकी चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 हरि गुरु नारायण 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 हरि गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।
सायंकाल रुक्मिणी विवाह है, जब कथा होती है तो दो प्रकार के लोग कथा करते हैं, एक होते हैं विरक्त सन्यासी, और ये जो ग्रंथ है परमहंस संहिता है, इसलिए सन्यासियों को अधिकार है, और एक होते हैं विद्वान ब्राह्मण, उनका परिवार होता है। जब आप लोग किसी सन्यासी से कथा सुने तो ये साड़ी है, चूड़ी है, ब्लाउज है, ये नहीं लाना, लेकिन हमारे यहां पर जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं वो उसकी अधिकारी हैं, इसलिए जो जिसको लाना हो रुक्मिणी जी के लिए लाना, और उसका उपयोग हमारे जो ब्रह्म वृंद है, अब ऐसा हो कि सबको मिले तो लाना, सबको जो मिल सकता है जो आप उनको सबको दे सकते दक्षिणा के रूप से, क्योंकि वही विवाह कराने वाले हैं, इसलिए। और जो सन्यासी विरक्त सन्यासी कोई कथा करता हो उनको केवल नमस्कार करना, त्वदीय वस्तु गोविंद शुद्धमेव, तो इतना कहते व्यास के इस सत्र को विराम। श्रीमन
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण।